यूकेरियोटिक कोशिकाओं में परमाणु झिल्ली के भीतर एक केंद्रक घिरा होता है और बड़े और जटिल जीव बनाते हैं। प्रोटोजोआ, कवक, पौधे और जानवर सभी में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। उन्हें यूकेरियोटा साम्राज्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यूकेरियोटिक कोशिका क्या है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में परमाणु झिल्ली के भीतर एक केंद्रक घिरा होता है और बड़े और जटिल जीव बनाते हैं। प्रोटोजोआ, कवक, पौधे और जानवर सभी में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। उन्हें यूकेरियोटा साम्राज्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वे एक ही कोशिका में विभिन्न वातावरण बनाए रख सकते हैं जो उन्हें विभिन्न चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। इससे उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से कई गुना बड़ा होने में मदद मिलती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की परिभाषा। यूकेरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल और बड़े जीव बनाती हैं। उनके पास एक परमाणु झिल्ली होती है जिसमें एक नाभिक होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक ही कोशिका के हिस्से के रूप में कई वातावरणों में पनप सकती हैं और उन्हें बनाए रख सकती हैं। एक विशेषता जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होने में मदद करती है और चयापचय प्रतिक्रियाओं को भी सुविधाजनक बनाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कुछ उदाहरण पौधे, जानवर, प्रोटिस्ट और कवक हैं। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की आनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में संरचित होती है। गॉल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस यूकेरियोटिक कोशिका के भाग हैं। जानवरों, पौधों, कवक और प्रोटोजोआ में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और उन्हें यह कैरियोटा साम्राज्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के विशेषताएं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली के भीतर केंद्रक घिरा होता है। दो, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तीन, फ्लैगेला और सिलिया यूकेरियोटिक कोशिका में चलने वाले अंग हैं। चार, कोशिका भित्ति यूकेरियोटिक कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। पाँच, कोशिकाएं माइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती हैं। छह, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक साइटोस्केलेटल संरचना होती है। सात, नाभिक में एक एकल रैखिक डीएनए होता है जो सभी आनुवंशिक जानकारी रखता है। यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकेरियोटिक कोशिका संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। इसमें विशिष्ट एम्बेडेड प्रोटीन सम्मिलित होते हैं जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के बाहर मौजूद एक कठोर संरचना है। हालांकि ये पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित है। ये कोशिका को आकार प्रदान करता है और कोशिका से कोशिका संपर्क में मदद करता है। यह एक सुरक्षात्मक परत है जो कोशिका को किसी भी चोट या रोगजंक के हमले से बचाती है। ये सेल्यूलोज, हेमिकेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन आदि से बना होता है। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है जिसमें कोशिका को सही आकार प्रदान करने, ऑर्गेनेल को लंगर डालने और कोशिका की गति को उत्तेजित करने के लिए माइक्रोफिलामेंट्स, सूक्ष्मनलिकाएं और फाइबर होते हैं। अंतःप्रद्रव्यीय जलिका। ये छोटी ट्यूबलर संरचनाओं का एक नेटवर्क है जो कोशिका की सतह को दो भागों में विभाजित करता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। दो, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम की कमी होती है और इसलिए ये चिकना होता है। नाभिक। नाभिक के भीतर घिरे न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। परमाणु आवरण में दो परतें होती हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्ली आयनों, अणुओं और आरएनए सामग्री के लिए पारगम्य हैं। राइबोसोम का उत्पादन भी केंद्रक के अंदर होता है। गॉल्जी का ये सपाट डिस्क के आकार की संरचनाओं से बना है जिन्हें सिस्टम कहा जाता है। यह मनुष्यों की लाल रक्त कोशिकाओं और पौधों की छलनी कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। वे नाभिक के निकट समानांतर और संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल है और प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें कोशिकाओं का पावरहाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली होती है। भीतरी झिल्ली वलनों में विभाजित होती है जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। वे कोशिका चयापचय के नियमन में मदद करते हैं। लाइसोसोम उन्हें आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल को पचाने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। प्लास्टिड ये दोहरी झिल्लीदार संरचनाएं हैं और केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें कैरोटीन नामक वर्णक होता है जो पौधों को पीला, लाल या नारंगी रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं और तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जमा करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका चक्र। यूकेरियोटिक कोशिकाएं कोशिका चक्र के दौरान विभाजित होती हैं। चक्र के दौरान कोशिका विभिन्न चरणों से गुजरती है। प्रत्येक चरण के बीच विभिन्न चौकियां हैं। निष्क्रियता G0 क्वियसेंस, इसे विश्राम चरण के रूप में जाना जाता है और इस चरण के दौरान कोशिका विभाजित नहीं होती है। इस अवस्था में कोशिका चक्र प्रारंभ होता है। यकृत, गुर्दे, न्यूरॉन्स और पेट की कोशिकाएं इस चरण तक पहुंचती हैं और लंबे समय तक वहां रह सकती हैं। कई कोशिकाएं इस चरण में प्रवेश नहीं करती हैं और अपने पूरे जीवन भर अनिश्चित काल तक विभाजित रहती हैं। इंटरफेस इस चरण में कोशिकाएं बढ़ती हैं और विभाजन के लिए तैयार करने के लिए पोषक तत्व लेती हैं। इसमें तीन चौकियां सम्मिलित हैं। एक गैप 1 G1, यहां कोशिका का विस्तार होता है, प्रोटीन भी बढ़ता है। 2 संश्लेषण S, इस चरण में DNA प्रतिकृति होती है। 3 गैप 2 G2, माइटोटिक विभाजन से गुजरने के लिए कोशिकाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। पिंजरे का बंटवारा माइटोसिस। माइटोसिस में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। विभाजन करने पर प्रत्येक पुत्री कोशिका मूल कोशिका की हुबहू प्रतिकृति बन जाती है। अभ्यास प्रश्न 1. यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? परिभाषित करें। 2. यूकेरियोटिक कोशिकाओं के घटक लिखिए। 3. यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं लिखिए। 4. यूकेरियोटिक कोशिका चक्र से आप क्या समझते हैं?